कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्यामदेश भक्त वृंद को श्रीमद् भागवत के शुक्रवार के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। राधाभाव गोरदास का धन्यवाद जिन्होंने हमको ये सेवा का अवसर दिया है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक उसका आज पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, ये सबसे छोटा स्कंद है, और इन 10 अध्यायों में विशेष रूप से श्रवण जो है और कीर्तन, क्योंकि ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें कीर्तन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है और श्रवण को, इसका मतलब भगवान को प्राप्ति का साधन जो है, भगवत प्राप्ति का साधन जो है वो सबसे शक्तिशाली साधन श्रवण है और कीर्तन है। तो यहाँ सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से नारद श्रवण कर रहा है, और भागवत के चतुर्श्लोकी का यहाँ वर्णन हो रहा है। लेकिन श्रवण के अंतर्गत पहले 3 अध्यायों में, पहले अध्याय में भगवान के विराट रूप का ध्यान और दूसरे अध्याय में भगवान का परमात्मा के रूप में ध्यान का वर्णन हो रहा है। सुखदेव महाराज जब प्रवचन कर रहे थे, परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, तो उस सत्संग में बहुत से महात्मा साधु ऐसे भी थे जो अलग अलग धारणा वाले, कोई ध्यान करने वाले योगी थे, कोई ज्ञानी थे, तो इसके लिए उन सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा संक्षेप में उनके साधन का वर्णन किया गया है। तो ये प्रसंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं योग मिश्रित भक्ति, वो भक्ति जिसके अंदर अष्टंग योग की मिलावट हो, इज ए मिक्सचर, इज ए मिक्स्ड योग। जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय में मिक्स योग है, किसके साथ मिक्स है, योग मिक्स विथ भक्ति। तो यहां योगी जो ध्यान करता है उसको कैसे अपने इंद्रियों को संयम में रख के, मन को एकाग्र करके, और प्राणों को किस तरीके से इस शरीर से विसर्जन करना है, ये विषय अब चल रहा है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। इत्थं मुनिस्तो प्रमेद विवस्थितो विज्ञान दृक्वीर्य सुरंधित ताश्या स्वपारणिना पीड्य गुद्दं ततो अनिलं स्थानेषु षडसो नमये जजितकल्मा। इत्थम जो है आगे वाले श्लोक से, प्रीवियस जो वर्ष है उसके साथ इत्थम का रिलेशन है। तो प्रीवियस वर्ष में कहा गया है कि पहले ब्रह्मभूत के स्तर पे आना चाहिए, ब्रह्मभूत के स्तर पे आना चाहिए, मतलब अपने आप को शरीर से, अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो शरीर से ऊपर उठानी चले, देह आत्म बुद्धि से ऊपर उठाए, अपने आप को शुद्ध आत्मा माने, ये ब्रह्म स्तर है। तो इत्थम मुनि, मुनि का मतलब मननशील, जो योग का अभ्यास कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, तो उसके उपरांत उसको क्या करना चाहिए, उपरमेत, उपरमेत कहते हैं, अब वो संसार से अपने आप को निवृत्त कर ले, उपरमेत, ऊपर का मतलब ऊपर, अपने आप को ऊपर उठा ले, कहां से ऊपर उठा ले, शरीर से और संसार से ऊपर उठा ले, उपरमेत विवस्थित, भाई उठाएगा तो कहीं अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए ना, कहीं से एक जगह छोड़ेंगे तो दूसरी जगह बैठने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो अपने आप को स्थित करे, सिचुएटेड, कैसे स्थित करे, विज्ञान का मतलब होता है अनुभव, प्रभुपाद लिखते हैं साइंटिफिक नॉलेज, और दृक होता है दृष्टि को, विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि के परिभाषा ये है कि किताबों में हम पढ़ते हैं वो तो हो गया ज्ञान, लेकिन अभ्यास करने के बाद उसकी अनुभूति हो और वो उन्होंने शिक्षा लिया हो, तो उस विज्ञान से मतलब अनुभव जो किया है, अभ्यास किया है, उससे उसकी शक्ति से वीर्य, उस बल के साथ सुरंधिता, वो अब सब चीजें रेगुलेट करे, उन सब चीजों को नियंत्रण में लाए। किसको नियंत्रण में लाए? असल में यहां नियंत्रण में लाना है प्राणों को। प्राण हमारे शरीर के अंदर वायु, प्राण वायु है, वो 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण हैं और 5 जो है वो सेकेंडरी प्राण है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये मुख्य प्राण है और देवदत्त, कुरकर आदि वो सेकेंडरी प्राण है। तो ये वायु है जो शरीर में चलती है और जब जीते हैं तो प्राण है तो जीते हैं। तो क्या करे? अपने विज्ञान के अनुभूति से के बल के ऊपर संयम में लाए आशय। आशय है का मतलब जिसके ऊपर ये बॉडी, जिस प्राणों से ये प्राण चलते हैं तो सारे शरीर को शक्ति मिलती है। तो प्राणों को जो है नियंत्रण करे। कैसे करे? स्वपार्षीणा, स्व मतलब अपने, और पार्षीणा का मतलब पांव की ईड़ी से, पांव की जो ईड़ी है, हील है, उससे क्या करे? आपीड़्य गुदाम, जो गुदा का स्थान है, मल त्यागने का स्थान है, उसको बंद करे, अपनी ईड़ी से उसको बंद करे। क्योंकि ये अपशुकन माना जाता है, अंत समय अगर प्राण गुदा से निकलते हैं तो उसको अधम गति मानी जाती है, तो इसलिए गुदा वाला रास्ता प्राण के निकलने का बंद करे। और उसके बाद ततः, उसके बाद अनिलम, अनिल कहते हैं वायु को, वायु का मतलब प्राण वायु, अनिल, अनिलः स्था, अनिलम स्थानेषु षट्षु, 6 स्थान, इसको कहते हैं 6 चक्कर। शरीर हमारे में 6 चक्कर हैं, नीचे गुदा के पास मूलाधार चक्कर से लेके फिर नाभि के पास चक्कर है, फिर छाती में चक्कर है, फिर कंठ में चक्कर है, फिर तालुए के पास वो जो हार्ड प्लेट है उसके पास चक्कर है, फिर 2 भ्रुवों के बीच में आज्ञा चक्कर है, और फिर जो टॉप ऑफ द हेड है उसको कहते हैं रुद्र, ब्रह्म रुद्र। तो ये 6 चक्कर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चक्र है, इसको कहते हैं, ये चक्र भेदन का योग है। असल में ये हमारे कृष्ण भावना में इसकी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जो योगी प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले युगों में ये सब लोगों को क्रिया करने आती थी, लेकिन अब कल युग में ये क्रिया संभव नहीं है, ऐसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो क्या करे फिर? तो उस प्राण वायु को इन 6 चक्रों से ऊपर मेत, ऊपर उठाए, नीचे से इसको ऊपर ले जाए, और क्या करे? जित क्लमहा, और जो भी इच्छाएं हैं मन के अंदर, क्लमश है, उन सब को भस्म कर दे, समाप्त कर दे, जस्ट बर्न देम, एक्सटिंग्विश देम। तो ये जो है योग अभ्यास है, जो योगी प्राण त्यागने के समय करते हैं, और वैसे भी अभ्यास इसका तो जीवन में करते हैं, गुदा को अपनी ईड़ी से बंद करके और अपनी प्राण वायु को मूलाधार चक्कर से ऊपर उठाते उठाते एक से दूसरे स्थान पे दूसरे। वैसे भी आप ओम का उच्चारण, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ओम इत्येका अक्षर विहारन मा मनुसम्र, ओम का उच्चारण करके आप इसको देखें, थोड़ा सा अभ्यास करें ओम, तो ये नीचे से वायु को ऐसे ऊपर लाया जाता है आज्ञा चक्कर, मतलब दो भ्रुवों के बीच तक। तो इस प्राण वायु को आस्ते आस्ते ऊपर लाना चाहिए। और इस प्रकार से ब्रह्मचारियों के लिए ऊर्ध्व रेता, जो रेता जो अपना जो वो शक्ति जिसके द्वारा सृष्टि में जैसे बच्चे का जन्म होता है, क्रिएटिव एनर्जी है, उसको बजाय नीचे ले जाने के ऊपर ले जाए। तो इस तरीके से वायु को ऊपर ले जाए। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ श्लोक का, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, अपने विज्ञान की अनुभूति के बल पर, वन शुड बी वेल सिचुएटेड इन एब्सोल्यूट रियलाइजेशन, अपने आप को ब्रह्म की स्थिति में स्थित करे, एंड दस एबल टू एक्सटिंग्विश ऑल मटेरियल डिजायर। इस प्रकार से मन जो बाहर जाता है विक्षेप के कारण, विक्षेप का मतलब है मन इधर उधर इंद्रियों के भोग के लिए भटकता है, उसको रोके योग के अभ्यास, उसको रोके वैराग से। और मन में दूसरा दोष है लय, लय का मतलब है नींद आना। आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, आंखें खुली करके बैठेंगे तो बाहर आंखों के द्वारा मन बाहर भटकने जाएगा। इसलिए कि योग के अभ्यास में ना आंख बंद करनी है ना आंख पूरी खोलनी है, बहुत आधी आंख खुली हुई और नाक के जो जो टिप है इसके ऊपर उसको केंद्रित करना होता है। तो इसको विक्षेप मतलब बाहर जो इंद्रियों के पीछे मन भागता है, और लय इसका मतलब जो नींद आती है, इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करे, इन दोनों को समाप्त करे। और फिर क्या करे, अपने इस शरीर के गुदा को अपनी ईड़ी से बंद करके, और फिर अपने प्राणों को छह चक्रों से ऊपर की तरफ उठाए। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब श्री प्रभुपाद जी पहले तो आजकल कलयुग में जो अपने आप को योगी कहते हैं, तथाकथित योगी कहते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम आसन सिखाते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करके कहते हैं ऐसे बहुत से दुरात्मा हैं। एक होते हैं महात्मा, एक होता है दुरात्मा। महात्मा तो भगवत गीता में वो कहे हैं, महात्मा नस्तुमाम पारत देवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमाव्ययम्। वो महात्मा है जो मेरी अंतरंग प्रकृति का शरण लेते हैं। लेकिन ये दुरात्मा है, ये कहते हैं कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, लेकिन फिर भी उनकी भौतिक इच्छाएं उनको भटकाती रहती हैं। इच्छाओं की प्रभुपाद जी कभी कहते हैं मैं अब योग अभ्यास करके ब्रह्म की अनुभूति कर चुका, और जैसे योग अभ्यास से उठ के बाहर आएगा कहेगा एक चाय लाना, तो बीड़ी लाना, वो सिगरेट भी चाहिए, चाय भी चाहिए, और योग का अभ्यास भी कर रहा है। तो ये योग के अभ्यास का मजाक उड़ाना है, इट्स जस्ट ए जोक। तो ऐसे ये जो योग अभ्यास करने जाते हैं वो बाहर से भी अच्छी तरह से जो है खा पी के जाते हैं, और घंटा आधा योग का अभ्यास करने के बाद बाहर आने के बाद भी सामान्य अपना जीवन है, उसमें इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म स्तर भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54 श्लोक में कहा गया है। वहाँ क्या गया है, कहा क्या गया है, कौन सा श्लोक है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समसर्वेशु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये जो श्लोक है इसका प्रभुपाद जी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। वहाँ बताया है कि जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया वो पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अच्छा, ये भौतिक इच्छाएं आती कहाँ से है, बोला ये आती हैं झूठे अहंकार के कारण। मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये मेरा है, तो मैं और मेरा ये असल में है माया। और ये मैं और मेरा वेदों में कहा गया है विष है, महम ममेति इति विष इदम न मम इति अमृत। मैं और मेरा ये तो विषयों में अटकने के लिए विष है, और मैं मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, ये अमृत है। और वैसे भी आजकल के जब शिक्षा देते हैं मैनेजमेंट की तो भी कहते हैं आई डोंट से आई एंड मी, से वी, मैं और मेरा कहने के बजाय हमारा कहो। लेकिन यहाँ कहा जाता है भगवान का सब कुछ है ऐसे मानो। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस गीता के श्लोक का उदाहरण देके कहते हैं ये जो इच्छाएं हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है अज्ञानता के कारण भौतिक भोग की इच्छाओं का बीज होता है, उस बीज से पाप होते हैं और पाप से दुख होता है। तो यहाँ अहंकार जो है, अहंकार झूठा अहंकार, ये भौतिक भोग की इच्छाओं का मूल कारण है और इसलिए बच्चों जैसे छोटे छोटे इच्छाओं में व्यक्ति लगा रहता है और इस भौतिक प्रकृति के ऊपर अपनी प्रभुता अपनी मालकी जमाने का प्रयास करता है। और करता क्या है, ये प्रकृति के पांच तत्वों के ऊपर अपना स्वामित्व जमाता है, प्रकाश अग्नि वायु इन सब के ऊपर अपना प्रभुता जमाने का प्रयास करता है। ऐसी मानसिकता से when one is in such mentality, one is led to believe in the strength of material science, तब वो कहता है कि ये भौतिक विज्ञान ही सब कुछ कर सकता है। और इससे उन्होंने क्या किया है, एटम बन बनाए हैं और वो उसके बाद ये जो है अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, किससे, कुछ मशीनों के द्वारा। अब कहते हैं ऐसी थोड़ी सी इनको कोई प्रगति मिल गई है भौतिक विज्ञान में, तो अब ये अहंकार झूठे के कारण कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति क्या है, और भगवान की शक्ति को भी ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की शक्ति ये है, वो इस मानव के इस छोटे से प्रयास को एक सेकंड से भी कम समय में समाप्त कर सकता है। ये एक लाइन आज कितनी सार्थक और सच्ची नजर आ रही है, अदृश्य आंखों से नहीं देखने वाले अनसीन एक कोरोना वायरस ने पूरे संसार के शक्तिशाली साइंटिफिकली एडवांस्ड मेडिकली वेल इक्विप्ड जितना दुनिया में सब प्रगतिशील है उन सब को घुटने टिकवा दिए हैं। उन सब का हाल यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, ये कहते हैं कि हम भगवान की शक्ति को भी चैलेंज कर रहे हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक लव मात्र में भगवान की शक्ति संसार के वैज्ञानिकों की तथाकथित प्रगति को धूल में मिला सकती है, मिट्टी में समाप्त कर सकती है। इस वक्त हमारे आंखों के हम सामने देख रहे हैं कि कितने बड़े प्रगतिशील सारे देश जो है कितनी बड़े संघर्ष कर रहे हैं, एक अनदेखे जिसको देखा भी नहीं जा सकता है, इतना छोटा सा एक विषाणु है उससे कितना बड़ा संकट दुनिया में पैदा हो गया है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो ब्रह्मभूति ब्रह्मभूत में स्थित है, यहां दो, जब ब्रह्मभूत हम कहते हैं तब हम आप समझ लीजिए कि भागवत में बद्ध जीव को कहा जाता है जीव भूत, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से, इज बाउंड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माया एंड मी एंड माइन फॉल्स ईगो बाय द हार्ड नॉट ऑफ फॉल्स ईगो, वो बंधा हुआ है, गांठ लगी हुई है, तो उसको कहते हैं जीव भूत। और जो मुक्त स्थिति को प्राप्त किया करता है उसको कहते हैं ब्रह्म भूत। तो जिसने ब्रह्म भूत स्तर को प्राप्त किया है वो क्या जानता है, वो ये जानता है कि परम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं तो परम ब्रह्म है, और वो परम ब्रह्म असल में परम पुरुष भगवान सर्वशक्तिवान सर्व जगह सर्वशक्तिवान सर्वव्यापक वासुदेव है। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति। यहां प्रभुपाद जी असल में वासुदेव सर्वमिति, ये जो ज्ञानी है उनका जो कई जन्मों के बाद इस स्थिति में पहुंचते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सब, उस श्लोक का थोड़ा सा यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। और वो ये जानता है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान हूं ऐसे नहीं जानता है। जो सही ब्रह्म स्तर पे है वो अपने आप को भगवान का अंश मानता है। जी अगर वो ब्रह्म है तो भगवान पर ब्रह्म है, वो आत्मा है तो भगवान परमात्मा है, और वो ईश्वर है तो भगवान परमेश्वर है। तो वो ये बात जानता है, इसलिए वो अपने जो स्वाभाविक स्थिति है उसको जानते हुए भगवान के साथ सहकारी बनता है। दुनिया में दो स्थितियां हैं, या भगवान के कोऑपरेटिव बनो या कॉम्पिटेटर बनो, या सहयोगी बनो या प्रतिद्वंदी बनो। प्रभुपाद जी अमेरिका में बहुत अर्ली डेज 66 की बात, 7 की बात है, प्रचार कर रहे थे, तो बॉस्टन में गिरिराज महाराज पहली बार प्रभुपाद से मिलने आए, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुम भगवान बनना चाहते हो या भगवान की सेवा करना चाहते हो। तो गिरिराज महाराज ने कहा, ऐसे लगता था कि प्रभुपाद जी ने मेरे अंदर से, मेरे हृदय में, और जो मेरी प्रक्रिया है कि मैंने अपने घर में अपनी शेंक के ऊपर एक स्टिकर चपका रखा था, आई एम गॉड, माना प्रभुपाद ने मेरी मानसिकता को पहचान लिया, लेकिन मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, मैं केवल प्रभुपाद की ओर देखता रहा। तो प्रभुपाद ने अपने आप उत्तर दिया कि अगर आप भगवान बनने की मूर्खता करोगे तो भगवान एक कॉम्पिटेटर और क्यों पैदा करने के लिए आपको बुद्धि देगा। वाई शल गॉड हैव ए कॉम्पिटेटर। अगर आप भगवान की सेवा करने चाहते हैं, देन गॉड विल गिव यू इंटेलिजेंस टू लव एंड सर्व हिम। तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि भगवान से प्रभुपाद ने कहा कि आप सहयोगी बन के सेवा करो तो सुखी रहोगे, और भोक्ता बनने की मूर्खता करोगे तो संसार में कभी सुखी नहीं रहोगे। तो इस दुनिया में दो ही प्रवृत्ति के लोग हैं, एक भगवान के सहयोगी हैं और एक भगवान के प्रतिद्वंदी है। भगवान ने कहा मैं अकेला भोक्ता हूं, तो हम अगर भोक्ता बनेंगे इसका मतलब भगवान के कॉम्पिटेटर बन गए, तो ये असुरी प्रवृत्ति हो जाती है। अहम ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये 11वें और ये 16वें अध्याय भगवद गीता में श्लोक है जो असुरी प्रवृत्ति की पहचान कराते हैं। ईश्वर अहम, अहम सिद्धो, अहम भोगी, तो ऐसा जो विचार करता है वो असुरी प्रकृति का है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसी स्थिति में वो भगवान का सहयोगी बनता है और हर प्रकार से भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध में भगवान की सेवा में लगता है। तो यहां दो शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं, एक सेवक है और एक जिसकी सेवा की जाए। और स्थानों में प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीडोमिनेटर एंड प्रीडोमिनेटेड, भगवान प्रीडोमिनेटर है और जीव प्रीडोमिनेटेड है। तो भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, ये हमारी पहचान है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये है असल में ब्रह्मभूत की स्थिति जिसमें ये समझता है। और ऐसा जो व्यक्ति इस स्तर के ऊपर है वो कभी भी इस प्रकृति के ऊपर प्रभुता जमाने की मूर्खता नहीं करता, और उसको अच्छी तरह से अनुभव से ये पता है कि हमको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है, बींग साइंटिफिकली वेल इन्फॉर्म्ड, साइंटिफिकली प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा शब्द कहते थे कि मैं विश्व के अंदर साइंस ऑफ कृष्ण, लव ऑफ गॉड, साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड सिखाने के लिए आया हूं। ये कोई मजहब नहीं है, कृष्ण भावना इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए साइंस। प्रभुपाद जी कहा मैंने इसको रिलीजन करके नहीं प्रचार किया है, मैंने इसको विज्ञान करके प्रचार किया है। ये भगवत प्रेम का विज्ञान है, ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, तो इसमें तो भगवान की श्रद्धा के साथ सेवा करता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो योगी बहुत दक्ष है, होशियार है, एक्सपर्ट है, अभ्यास किया हुआ है, वो अपने प्राणों का अच्छी तरह से नियंत्रण में रखता है, अपने वश में रखता है। प्राणों को वश में रखने के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम करने से मन संयम होता है। असल में आसन से इंद्रियों को संयम में किया जाता है, प्राणायाम से मन को संयम में किया जाता है। और प्रभुपाद जिसका ऐसे प्राणों के ऊपर अपना वश चलता है, संयम कर रखता है, उसको यहां सलाह दी गई है कि वो जब शरीर को छोड़े तो क्या करे। उस वक्त गुदा को अपनी ईड़ी से बंद करे और फिर अपने प्राणों को 6 चक्रों से, वो चक्कर जैसे नाभि से चक्कर, नाभि चक्कर से ऊपर लेके हृदय में आए, हृदय चक्कर पे, उसके बाद छाती में, और फिर प्रभुपाद ने लिखा है ये जो पैलेट के ऊपर चक्कर है, उसके बाद दोनों आंखों के बीच में, उसको आज्ञा चक्कर कहते हैं। इनके नाम है, इसका नाम 6 चक्र भेद है। ये भगवत गीता में प्रभुपाद ने इनका थोड़ा सा उल्लेख 13वें अध्याय में किया है, जहां भी योग का अभ्यास का वर्णन है, तो इसको 6 चक्र भेद कहते हैं। और उसके बाद ब्रह्मरुद्र जो बिल्कुल कपाट के ऊपर होता है, इसको ब्रह्मरुद्र कहते हैं। यहां से अपने प्राणों का विसर्जन करे, जो ब्रह्मरुद्र से अपने प्राणों का विसर्जन करता है वो उत्तम गति को प्राप्त करता है। और इस प्रकार के योग के अभ्यास से, लेकिन योग के अभ्यास के लिए प्रभुपाद जी अभी एक शब्द कह रहे हैं, ये योग का अभ्यास जो है ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब है ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये एक क्रिया है जो हम उसने सीखी है, इसको योग क्रिया कहते हैं। और अभ्यास से, और अभ्यास से और क्रिया से हम आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक योग सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं योगियों को, ये तो बात और की जा रही है, यहां बात की जा रही है कि कैसे प्राण त्यागता है योगी। लेकिन योग सिद्धियां जो योगों के पास अणिमा लघिमा महिमा आदि सिद्धियां होती हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक वैज्ञानिक, एक बहुत बड़ा जो विदेशी यहां जर्मनी का आया, उसने योगियों की सिद्धियों को देखा, कहा कि ये तो सिद्धियां सारी आजकल के विज्ञान ने, छोटे से छोटा होना, पत्थर के अंदर जाना, बड़ी सुरंगें बनाई है, गाड़ियां जा रही है आकाश में, बड़ा उड़ना, हवाई जहाज बना दिए, तो जो योग की सिद्धियां हैं ये तो विज्ञान से प्राप्त हो गई है, तो इसका तो ये तो सारी मैकेनिकल है। तो यहां जो प्रोसेस है ये भी क्रिया, ये क्रिया योग है, और ये मैकेनिकल है, लेकिन इसमें स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए प्रयास किया जा रहा है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, वो बहुत पुराने दिनों में, इसका मतलब दूसरे युगों में, जब ध्यान साधन था तो सामान्य व्यक्तियों को ऐसे ऐसे अभ्यास होता था और वो दिव्यता की तरफ आगे बढ़ते थे, क्योंकि उस समय जो जीवन जीने की शैली थी वो इतनी सरल थी और उन दिनों में ये करना आसान था। लेकिन आज जो हम जिस युग में जी रहे हैं, और विशेष रूप से इस कल युग में इतना सारा डिस्टर्बेंस है, इतना सारा परेशानियां हैं, तो प्रैक्टिकली एवरीवन इज अनट्रेंड इन दिस आर्ट ऑफ बॉडीली एक्सरसाइज। इसलिए देखा जाए तो कोई 0.00001% कोई अभ्यास आज भी हिमालय में ऐसा करता होगा, ऐसे नहीं कि नहीं है, ऐसे अभ्यास करने वाले कोई अल्प एक आधा मिल जाए लाखों में एक, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति के लिए अभ्यास संभव नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी अब सुझाव दे रहे हैं हमको कि आपको इतनी सारी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन को वश में करना है, इंद्रियों को संयम में रखनी है, प्राणों को वश में रखना है, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कल युग में आजकल केवल भगवत के नाम उच्चारण करने से ये सारे जो फल हैं, इन सारी योग क्रियाओं से प्राप्त होते हैं वो अपने आप केवल भगवत नाम उच्चारण से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे इस श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। अब आपके कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आज के श्लोक का भाव ये है कि पहले जमाने में, पहले युगों में लोगों को अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण होता था, संयम होता था, कंट्रोल होता था। अपनी इच्छाओं को भी वश में करते थे, अपनी इंद्रियों को भी वश में करते थे, आपके अपने मन को भी एकाग्र करने का अभ्यास था, और इस तरीके से वो आध्यात्मिक पथ में आसानी से आगे बढ़ने का जो है उनके पास शिक्षा थी, और इसलिए अंत समय वो अपनी सदगति करने में सफल होते थे। लेकिन कलियुग में ये सब क्रियाएं करना असंभव जैसी है, इट्स इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये सब करना इम्पॉसिबल है कलियुग में, इट्स नॉट पॉसिबल। जब ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है तो कोई तो अल्टरनेट होना चाहिए ना। भगवान तो सब युगों के स्वामी है, तो कलयुग में भी भगवान ने कोई साधन तो दिया होगा हमको, जिसको करने से हम वो सब फल प्राप्त कर सकें जो दूसरे युगों में सबको होता था। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से यहाँ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात भगवान राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, जिन्होंने बहुत सरलता से हमको कली काल में इस श्लोक का महत्व बार बार कहा, हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरनथा। कलयुग में और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई कोई साधन नहीं, तीन बार कहने का मतलब है सतयुग की तरह ध्यान करना संभव नहीं है, त्रेता युग की तरह यज्ञ करना संभव नहीं है, द्वापुर की तरह बड़ा बड़ा अर्चा विग्रह का उपासना और अर्चन करना संभव नहीं है। इसलिए गति प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है और भगवत प्राप्ति करनी है, तो एक ही मार्ग है कि कौन सा मार्ग है, हरिहर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। और ऐसे तो सातवें अध्याय भगवद गीता के अंत में भी कहा गया है कि यज्ञेशु तपस्सु दानेशु यत फल पुण्य, जो फल प्राप्त होता है वो सारा ही केवल भगवान के शरण लेकर नाम श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है, ये सब चीजें उसमें समाई हुई हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये सारे साधन ऐसी करेंसी के नोट थे जो उन युगों में चलते थे, इस युग में उनसे ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है। इस युग की करंट करेंसी है हरिनाम संकीर्तन, और संकीर्तन का मतलब साथ मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करना, और जब अकेले हैं तो अपने हित के लिए जप करें और सामूहिक कल्याण के लिए कीर्तन करें। तो ये दो मार्ग हमारे पास अब सरलता से, इनका पालन करने से इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, बुरी इच्छाओं को रोक सकते हैं, बुरे कामों से बच सकते हैं, अनर्थ से निवृत्ति कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल जीवन और सिंपल जीवन एंड सिंपल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और ऊंच विचार का मतलब भगवत तत्व का विचार होता क्या है। अगर सादा जीवन रखेंगे, सिंपल जीवन रखेंगे, सिंपल सिंपल लिविंग करेंगे, तो भौतिक प्रकृति हमारे को अपने बंधन में डाल नहीं सकेगी। यू बिकम सिंपल इन योर लिविंग, देन देयर विल बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल नेचर, तो बाहरंग प्रकृति के माया जाल से बच जाएंगे। और हाई थिंकिंग का हाईएस्ट कृष्ण भगवान है, उसका अगर स्मरण करेंगे तो भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय मिल जाएगा, डिवाइन भगवान की एनर्जी है, अलादीनी शक्ति का आश्रय मिल जाएगा। तो भौतिक जगदी शक्ति से मुक्त होके आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में चले जाएंगे तो फिर भगवत अनुभूति और आनंद, प्रमोद आनंद और प्रमोद में हो जाएंगे। इसलिए चेतना महाप्रभु ने जो कहा है, ये हृदय को साफ करके कलमश से मुक्त होने के लिए, चेतो दर्पण मार्जन करने के लिए, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अब आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण,
दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, अभी जैसे हम लोग तो हमेशा सुनते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जाप करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर हम लोग तो ये देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने में बहुत कम रुचि मतलब लेते हैं हम लोग। तो ये जो ज्यादातर मतलब इसलिए कई बार कई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, और कई बार बहुत सारे मतलब भक्तों का आपस में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो लेकिन ये जो मेन कारण तो शायद इसका यही है कि हम क्योंकि अच्छे ढंग से जपा नहीं करते हैं। तो ये जो अच्छे ढंग से जपा करने के लिए कौन कौन सी जो टिप है कि अच्छे ढंग से हमको रुचि आ जाए जपा करने के
लिए? देखो, रुचि आती है अनर्थ निवृत्ति के और निष्ठा के बाद। श्री रूप गोस्वामी ने हमको ये शिक्षा दी है कि पहले श्रद्धा है, तब आप आज सत्संग में आए हैं। अब आपको तीसरे स्टेप में जाना है, उसमें भी बहुत से लोग नहीं गए हैं। उसको कहते हैं आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब है गुरु का शरण लेकर और उनसे भगवान का नाम की दीक्षा लेकर नाम जपना। और जब ये नाम जपना हम शुरू करेंगे तो अनर्थ आस्ते आस्ते कम होने लगेंगे। और अनर्थ जब तक है तब तक नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाता है पूर्ण रूप से। जैसे आग के ऊपर अगर राख पड़ी हुई है तो आग उसके अंदर से लपटें दिखाई नहीं देती हैं। भगवान का नाम शक्तिशाली है, लेकिन हम अभी तक तीनों गुणों के प्रभाव से अनर्थों से घिरे हुए हैं, इसलिए नाम अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। तो फिर अनर्थ निवृत्ति होने के बाद निष्ठा हो जाती है कि सवाय इस नाम के और कोई हमारा सहारा नहीं है, तब जाके रुचि की स्तर आती है। तो रुचि की छठा स्तर है। हरे कृष्णा, ता उठे आया जा तो मुझे पानी हो रहा भरे से। सो इसके लिए असल में सामान्य जो अब जो हम जो ज्यादा प्राय हम जो नाम जपते हैं तो इसके तीन स्तर होते हैं। नाम अपराध के साथ जपना, दूसरा होता है नाम के प्रभाव का पता नहीं होना और नाम जपना, उसको नाम अभास कहते हैं। और तीसरा होता है शुद्ध नाम बट जपना। ये नहीं बेटा वो पानी चलाओ अंदर वाला, शुद्ध नाम। तो जब तक शुद्ध नाम का स्तर नहीं आता है, और जब अपराध से नाम जपते हैं ना तो हमारे पास वैभव आ जाता है, मान सम्मान मिलता है, पूजा प्रतिष्ठा होती है। ये नाम अपराध से हो जाती है, और प्रायः इस नाम अपराध के साथ जो ये जो मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा है इसमें बहुत से लोग अटक जाते हैं। लेकिन इन सबको छोड़ना है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, इसको छोड़ के निम्रता से चेतना महाप्रभु का ये श्लोक याद करके फिर नाम जप रोज करना चाहिए। तृणाद अपि सुनिचे न तरोर अपि सहिष्णो न अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। अगर हरि का कीर्तन सदा करना है तो अपने अंदर निम्रता, अपने अंदर सहनशीलता, अपने अंदर अमानीता, ये पहला लक्षण है ज्ञान का। अमानी त्वम अदम धी त्वम, पहला अमानी तो पहला लक्षण है ज्ञान का। तो हमारे अंदर ये निम्रता सहनशीलता अमानिता आएगी तब भगवान के नाम में हमको रुचि होगी। तो इसलिए नाम अभास से मुक्ति मिल जाती है। जैसे अजामिल नाम अभास कर से नारायण का नाम उच्चारण किया, वो दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर है प्रभुपाद जी कहते हैं क्लियरिंग स्टेजेस ऑफ चैंटिंग होली नेम। क्लियरिंग स्टेज का मतलब हम शुद्धि करते हैं नाम जप की, आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए नाम प्रभु का शरण लेना चाहिए। महाप्रभु ने दो बातें बताई है। एक तो ये है कि हमको भूत शुद्धि करके नाम, जैसे पूजा करने जाते हैं ना, जो मंदिरों में स्थापित डीटी है उसकी पूजा करने से पहले शरीर की शुद्धि की जाती है, उसको कहते हैं भूत शुद्धि, क्योंकि भगवान चेतन है, उसकी सेवा करने के लिए आत्मा के स्तर के ऊपर, ब्रह्म के स्तर के ऊपर स्थित होकर सेवा की जाती है, तो उसको शब्द को कहते हैं भूत शुद्धि करना। और अंग न्यास करना, कर न्यास करना, इसका मतलब सब जगह भगवान का नाम उच्चारण करके शरीर को, ऐसे जप करने से पहले भूत सिद्धि के लिए महाप्रभु ने कहा है हम अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन को पहले खत्म कर दें, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूदर नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं गृहस्थी नहीं, तो फिर मेरी क्या पहचान है जब भगवान का नाम जप रहा हूं, गोपी भरतहु पद कमल योर दास 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 अनुदास, मैं गोपी जन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास हूं, ऐसे भाव से और हृदय को शुद्ध करने के लिए नाम जपते हैं तो फिर हमारा नाम शुद्ध होता है, तब हमारे अंदर रुचि आने लगती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नाम इतना मधुर है कि एक जबान से क्या लूं, मेरे को कोटि कोटि जबान, करोड़ों जबानें दें और इसको सुनने में इतना रस आता है कि दो कान कम पड़ते हैं, करोड़ों कान मेरे को दे दो, लेकिन अभी हमारे को नाम में रस नहीं आ रहा है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं हमको पीलिए की, जांडिस की बीमारी है, नाम मीठा है लेकिन हमारी जबान के ऊपर भौतिक भोगों के अज्ञानता के कारण कड़वापन पहले से लगी हुई है, इसलिए इसका इलाज ये है कि आदर के साथ इस नाम को जपते रहें तो ये मूल से बीमारी निकल जाएगी, तो समय आने के ऊपर नाम में रुचि होने लगेगी। हरे कृष्णा। दो चींटियां थी, दो चींटियां, चींटी समझते हैं, दो एंट्स थी आपस में, एक दिन दो चींटी एक दिन आपस में मिली, एक ने कहा बहन मैं बड़ी खुश हूं, मैं मिठाई के दुकान में रहती हूँ, रोज हलवा खाती हूँ, गुलाब जामुन खाती हूँ। दूसरी ने कहा मेरी दुर्भाग्य है, नमक के गोदाम में रहती हूँ और रोज नमक मुंह में आता है। बोला कोई बात नहीं, तुम बहन मेरे पास आ जाओ, आज मिठाई खाना। वो आ गई उधर, उसको दे दिया हलवा खाने को, बोला ये भी कड़वा है, नमकीन है। अरे हलवा कभी नमकीन होता है क्या? बोला नहीं नमकीन लग रहा है। बोला मुंह तो खोलो, मुंह खोले तो अंदर एक नमक का दाना पड़ा था पुराना, तो नमक का दाना अंदर पड़ा है तो हलवा खाया तो भी नमकीन लग रहा है। तो भगवान का नाम तो बहुत मीठा मधुर है लेकिन हमारे अंदर अभी भी अविद्या का नमक पड़ा हुआ है, जो हमने कई जन्मों से भोग करते करते इसको चपका के रखा है जबान के ऊपर, इसलिए भगवान का नाम मीठा होते हुए भी मीठा नहीं लग रहा है। हरे कृष्णा।
जैसे आपने बताया कि नाम अपराध जो से भी जो है ना मटेरियल फैसिलिटीज आती है, मतलब बहुत सारे,
अरे ये पूरा मायापुर में देखो, मंदिर के बाहर जो बड़े बड़े घर बने हैं ये सब नाम अपराध वाले अमेरिका से पैसा कमा के आके बनाए हैं, दे जाके देख लो, यहाँ से भक्त बन के गए थे और वहां जाके फिर पेट्रोल पंप पे काम किया और टी शर्ट बेचे नाम नाम का, तो उनको इतना धन मिल गया इतना बड़ा, हम तो देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि नाम अपराध वालों को बहुत बड़ा धन मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलता है।
लेकिन ज्यादातर जो हिंदू लोग,
आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है,
ज्यादातर जो अभी जो हमारे जो हमारे सेल्फ ग्राम में नए नए लोग आते हैं वो तो, और खासकर जो इंडियन हिंदूस है वो तो इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ भौतिक उनकी इच्छा पूर्ति होना चाहिए,
तो यो उसको भक्ति उसको भक्ति नहीं कहते हैं, वो भक्ति नहीं, भक्ति शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन जो रूप गोस्वामी दी ने दी, अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल ये न कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, जिसमें कोई भौतिक इच्छा तो होगी तो वो भक्ति नहीं है। ये क्या है, ये लोग जो है भगवान को अपना सेवक मान के भगवान से कुछ मांगने आते हैं तो ये अच्छे हैं, इसको सुकृति न कहा गया है भगवत गीता में, ये अभी भक्ति के दायरे में, भक्ति के सर्किल में नहीं आते हैं, ये भक्ति से बाहर हैं, लेकिन ये सुकृति है, कम से कम भगवान के पास तो आते हैं, और कहीं भटकते नहीं है। अगर भगवान के पास कुछ मांगने भी आते हैं तो वो सुकृति जरूर है, लेकिन वो भक्ति के दायरे में नहीं आते, उनको भक्ति में नहीं माना जाता है, वो भक्ति के दायरे से बाहर है। उनकी भक्ति जो है कर्म मिश्रित भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति है, जैसे आज के श्लोक में योग मिश्रित भक्ति है, तो ये मिलावट वाली भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। और शुद्ध भक्ति के बगैर तो कृष्ण प्रेम का प्रकट होना संभव नहीं है।
लेकिन जो जो नए भक्त आते हैं, नए भक्त को तो कृष्ण प्रेम में शुद्ध भक्ति का तो समझ नहीं आता, तो उनको तो ये मतलब उनको जब बोलते हैं हम उनको तो ये बोल सकते हैं उनको कि आप हरे कृष्ण जाप करेंगे तो आपको भौतिक सुविधा भी मिलेगी आपको,
ऐसा बोलना नाम अपराध है। नाम के बल के ऊपर पाप करना या नाम को कर्म कांड जैसा समझना कि इससे हमको कुछ लाभ मिलेगा, ये नाम अपराध में आता है। नाम हम जपते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारे हृदय की शुद्धि के लिए, नाम हम किसी भौतिक भोग के लिए नहीं जपते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जब हम नाम जपते हैं तो भगवान बिना हमारे मांगे हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देते हैं, भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन तब देते हैं जब हम उनसे भोग न करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। प्रभुपाद ने कुछ मांगा नहीं था भगवान से, 40 रुपया लेके अमेरिका गए, लेकिन 40 रुपया तो वापस वहां से 67 में आए, तो वो 40 रुपया तो उन्होंने वहां एक्सचेंज भी नहीं किया था, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान देते नहीं है, जब भगवान की सेवा में लगाओगे तो आपको अपार धन दे देंगे और अपार सेवक दे देंगे, लेकिन अपने भोग के लिए करोगे तो आपके कर्मों का जो है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
हरे कृष्ण,
दंडवत प्रणाम।
है कि जब मौत आता है तो इसमें पहले क्या है, आत्मा चला जाता है या प्राण वायु, और ये प्राण वायु और जो आत्मा है उसमें क्या रिलेशन है?
प्राण वेहिकल है, प्राण वेहिकल है जिससे के द्वारा आत्मा बाहर जाती है। प्राण वेहिकल है, वेहिकल जैसे हम गाड़ी में कहीं जाते हैं, जहाज में जाते हैं, ऐसे प्राण में फ्लोट करता हुआ आत्मा बाहर निकलता है। तो आत्मा बाहर कौन सी व्हीकल से जाता है? प्राण रूपी व्हीकल से जाता है। वैसे भी प्राण आत्मा के साथ, आत्मा जब जाती है सूक्ष्म शरीर के अंदर जाती है तो उसके साथ उसके प्राण होते हैं, वो प्राण की व्हीकल के माध्यम से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। हरे कृष्णा।
What are the norms to be followed for the benefit of our relatives in case they pass away, if they are not following Krishna consciousness, and how to help them if they pass away?
If some relative pass away, at that time if we are there, then we should chant holy name, and if the name enters into his ears at that time, then he will be benefited at least for the better next life, at least human being. And we do give some Gangajal in his mouth, we do put a tulsi in his mouth and close his eyes and chant holy name. And after he depart, still the soul is for 11 days hovering in the home. Therefore, we should recite, in olden days, Garuda Puran used to be recited, Bhagavatam Puran, or Bhagavad Gita should be recited. That recitation, that soul will hear, and that will help him to advance further in a spiritual journey. So, Gita hai, well, antim samay hai, toh Bhagavan ke naam ka kirtan karna chahiye, aur tulsi dal, ganga jal adi dena chahiye, agar chala gaya hai, toh piche, भगवान के नाम का कीर्तन और सत शास्त्र का पुराण का पाठ करना चाहिए और उसका फल उस जीव को देना चाहिए। हम कहीं जाते हैं ऐसे जान पहचानने वाले के घर तो सबको कहते हैं भगवान का नाम जप के इसका फल, यू चैंट होली नेम एंड गिव द रिजल्ट ऑफ योर चैंटिंग टू द डिपार्टेड सोल दैट ही शुड बी बेनिफिटेड वेयर एवर ही इज।
और एक प्रश्न है, योगी आफ्टर लिविंग दिस प्लान planetary system, our Earth planet, would they go directly to the Brahman area, or can they be in any particular thing depending on what type of yoga?
जनरली इस अध्याय में अगर हम देखेंगे तो वो परमात्मा का ध्यान करते हैं. दे मेडिटेट ऑन परमात्मा एंड परमात्मा हैज नो एग्जिस्टेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. परमात्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं है. परमात्मा इज नॉट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. लाइक विराट रूप इज नॉट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड परमात्मा द सुपर सोल इज नॉट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो अल्टीमेटली देयर डेस्टिनेशन इज मर्जिंग इन टू द ब्रह्म. Highest destination they will acquire is merging into the Brahm. If they come in contact with devotee and they start devotional service, they may be transferred to the spiritual planet. Otherwise, they will merge into the Brahm Jyoti.
From Brahmacharya, again they will come back and they take as a human birth.
It's not always. Only there is one verse which Srila Prabhupada used to quote from 10th canto of Srimad Bhagavatam, 2nd chapter, where Brahma Shankar, they are praying to the Krishna in the womb of Mother Devaki. They are saying, "De Arvinda Aksha Vimuktaha Mukta Manina Krichena Parampadena," those who think that they are liberated. They have done a higher austerities, but they are not yet purified, and they disrespect the lotus feet. Angrihi anadrat. They disrespect the lotus feet of the Supreme Lord. Adho patanti adha, and then they can fall. Generally, Prabhupada used to give normally, it says, in this world, these yogis and gyanis, they give up their home, they give up all their facilities, then they want to become a Brahm realized, and they think we are already become Brahm, but again they don't get any taste there, so they come back in the world in a politics, or they come in philanthropy, they open hospitals. Prabhupada says like this, by which he conclude that when here they are not satisfied with their Brahm realization, so there is no activity in the Brahm Jyoti. So because there is no activity, so they want to do activity, because soul by nature is active, therefore they will come back for some activity.
There's a devotee asking, Paramatma is in a form, so how does it actually merge into Brahman?
Paramatma is in form in this material world, but there is no need of Paramatma in a spiritual world. But basically, I read this in the book like that, they go in Brahma Jyoti. But Paramatma is not in this. Paramatma has no existence in a spiritual world. These are form of the Vishnu which are for creation or for material world. In a spiritual world, there is a Narayan. If they know that they are worshipping the Vishnu or Narayan of the Vaikuntha in that mood, then they can be transferred to the spiritual world. But they are meditating on Paramatma, which has no existence in the spiritual world. And their destination is Brahma Jyoti. This is what the conclusion I have read in the Prabhupada's purports. Actually, yogis are not separated. They are considered within jnanis. Karmi, jnani is like that. And then there is bhakta. Yogis are one version of the jnanis. An advanced version of the jnanis.
They meditate on the form of the Lord. Meditating on the form of the Lord is different from anirakar.
Yes, like there are jnanis here, they have a temple, they have a farms, and they say in the early stage you need farm, and when do you reach beyond the farm, then you merge into the Supreme. So they think the farms are temporary, that only for focusing the mind we need the farm in the early stages, but when we advance then we don't need farm. That's why the whole system of the This Advaitwadis, jnanis, they have also upasana of the Deva, Devish, Deva. They worship Vishnu, they worship Ganesh, they worship, they all have a form. They worship Surya, they worship Durga, they have a form. But they think these forms are temporary. I think that these forms are only for the beginners, but when we advance then we don't need form. So this their concept in the early stage is form, and then they want to go to the formless. This is the basic difference between the devotee and the jnanis. Because they say from formless, form manifest. And we believe that from form, formless is perceived. So there is a person with a form, and from him, formlessness is his effulgence. But that, so this is a completely opposite concept of the two schools. And my common sense, I use common sense. If you have some form in front of you, and then you enlarge that form in your camera till you reaches to the inform, then you there is nothing, it's everything is. So this is possible. From form you can go to the formless. But if there is nothing and you take a photo of the sky, then you minimize it, there will be no form. So from formless you cannot make any form. But from form you can make something formless if you go away. So when we are going away from Krishna, then only we can see the formless part, formless aspect of Krishna.
Hare Krishna Prabhu, there are two more questions.
Yes.
Does Atma go in the vehicle of Prana, the Atma which goes in the vehicle of Prana, is it the same Prana which enters the next body?
Yes, pa. Like as long as there is a subtle body which includes mind, intelligence, false ego and the and polluted consciousness, which is called chitta, mana, buddhi, ahankar and chitta. This is subtle body. And with that prana and the subtle body, the living entities goes from one body to other body with the same mind. Not only same prana, but the mind is same. Therefore, we have changes millions and trillions of bodies, but our mind is same, which is with us from the day one. So we never change mind. The same mind go. This is the mind which carries the soul from one body to other body by its impression. And the prana is with him also. But this is a subtle form of the prana. This is a subtle form of the prana which is with him.
Is there any difference between a sannyasi and a babaji, for example, in Vrindavan?
This is another question. See, sannyas, the word sannyas is in Shankaracharya. Presently, sannyas is the word in Shankaracharya Sampradaya. Though three dandi sannyasis existed from Madhvacharya time, but presently in Vrindavan, Babaji's, they are Paramahansa. I mean, actually they are Paramahansa beyond Varnashram Sannyas. But they are not at that level, but actually our Goswamis, they were Babaji's. They were in a white cloth, they were Paramahansa. But Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada, he said, Paramahansa is a higher stage and we are not at that stage. Therefore, I would like to come back to the Varnashram system and introduce sannyas. So, among the Vaishnavas, only Gaudiya Vaishnava takes sannyas. All other Vaishnava Sampradayas, they are called Vairagi. Generally, they are called Vairagi, and Gaudiya Vaishnavas, they are renounced order of life, they are called Babajis. They are called Babajis and the others are called Tyagi or Vairagi. But word sannyas they don't use generally, because sannyasi say behind them Swami, while the Vaishnava say Das in the name behind. All the Babajis are Das. they have to put word Das behind their name. This is a tradition. So somehow or other, our in Gaudiya Vaishnava Bhakti Siddhanta Saraswati is after Bhakti Siddhanta Saraswati, we have this sannyas system, which is more or it is three dandi sannyasi, but it's more or less like the sannyas order. There's no other sannyasi in Vaishnava by name sannyas.
Another question, Maharaj, you mentioned that we can only get Krishna after we are very pure and, you know, totally surrendered and without any material desires. So how did Dhruva Maharaj attain Krishna's mercy, Lord Vishnu's mercy, as he was praying with material desire?
This is said in Bhakti Rasamrita Sindhu, it says these four Sukratira, Arto Jigyasur Artha Arthi Jnani, they are not actually pure devotees, but if they get the mercy of the Lord or the devotee, they can be entered into the circle of the devotees. So Dhruva Maharaj get the blessing of Narada, and then by his meditation he got the direct mercy of the Supreme Lord Vishnu, and then still he is in Dhruva Lok. He is not liberated, he is not back to the spiritual world. Still he is in Dhruva Lok and staying and crying there. Narada visited him and he saw Dhruva crying. My dear disciple, why you are crying? You are here in a best planet, which is not destroyed when there is annihilation. He said, that's all right, but I got the diamond, Supreme Lord, but I was asking the material desire, so I am crying that I was a fool, number one. So all these who goes for material desire, so if they get the mercy of the devotee or they get the mercy of the Supreme Lord, then they can enter into the realm of pure devotional service. So Dhruva Maharaj also in the list of the Brada Bhagavat Amrita, where the list of devotees is there, he is at the border of the devotees list. He is not in a higher grade devotees list. Yeah. Krishna, for Krishna Bhakti, Dhruva Maharaj is not in that list. He's a Narayan, he's a Vishnu Bhakta. Vaikunth, highest destination he can get is Vaikunth, not Golok Vrindavan.
But why they given then his name in, as a Dhruva Maharaj in Bhagavatam, if he's not devotee?
There is a name of Hiranyakashipu in Bhagavat, so what will we say? There is a name of Kansa in Bhagavatam. Bhagavatam is giving the levels of realization. So he will get one type of mukti, which is called maybe Vaikuntha. Vaikuntha, there are four type of liberation in Vaikuntha, one type of liberation in Brahma Jyoti. And the pure devotees don't even expect these liberations. This is Sarupya, Sayujya, Samipya, Sarishti. These are Vaikuntha liberations. And many devotees go there. Even Narada is not Raganuga Bhakta. Narada is a perfection in Vaidhi Sadhan Bhakti, and he is the disciple of Narayan. So it's not the ordinary thing. It is the highest thing. But the topmost on the other side is Krishna Bhakti, which will lead us to the Krishna Lok, which is not available to even the greatest devotee like Prahlad, like Durva, like Narada. Their highest destination is Vaikuntha. Until and unless some follow in the footstep of the eternal associate of Krishna in Vrindavan, there is no possibility of entering into the Golok Vrindavan. For us Gaudiya Vaishnavas, the most blessing, the guest best blessing is that if we follow the followers of Chaitanya Mahaprabhu, they are all the eternal associate of Krishna, then we have very easy and simple way to enter into the Golok Dham. Because all the associate of Chaitanya Mahaprabhu are actually parshad of Krishna in Vrindavan, Golok Vrindavan, mostly, 99%.
But Prabhu, then why Chaitanya Mahaprabhu, he was again hearing in Bhagavatam about Prahlad Maharaj, chapter.
Only he was teaching us, he heard it 100 times, that how much determination Prahlad Maharaj had to approach the Supreme Lord. If the devotee will get a certain percentage of that determination, then his life will be successful. So he was realizing from Dhruva Maharaj the determination, and from Prahlad Maharaj the endurance in the devotion. How many difficulties and reverses are in his life, but still he was firmly determined to be fixed on the worship. So these two are good items for the devotee to practice: the determination and endurance are the forbearance. If there is some trouble, then still we will be fixed in our devotional service. So these both Mahaprabhu heard, because Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. He is a God for all, so he has a room for everybody. But actually, he was relishing the pastime of Krishna with the gopis in the association of Ramanand Rai and Swarup Damodar. They are Lalita and Vishakha, generally. But he said, take to the Bhagavatam, get purified by reading the first 9 cantos, then you can have eligibility to enter into the 10th canto. So the determination is the eligibility from the Dhruva Maharaj. Anji, yes?
There are some 3 more questions for you. One says, when mind is going to other body, and if the mind is perverted and has got it from the previous life, then what stage does the perversion enter in the new chapter when he enters?
Minds have many impression on it, therefore Prabhupada writes, sometime we don't have experience of certain things and we see those things in dream, because the mind has all these impressions from past experience. Very simple thing is that baby is born, he has no practice, but he simply, you put near the nipple of the mother, it starts sucking milk. So he learned this from many past life, which are impressions in the mind. So all these natural reflexes, they are through the mind, body is practicing when he comes in a next body. So this is a very simple verse in a Bhagavad Gita 15th chapter. As the air goes from the flowers and takes with him the fragrance of the flowers, similarly the mind, the soul goes from one body to other body with a mind which carries all the impressions or the vasanas. Flavors means vasanas, but it was from one body to other body. And whatever his desires which are unfulfilled, he will be given senses on the mind to fulfill his unfulfilled desires. So same mind we have is still, remember this, yes. We have changed our bodies, but our mind is same. Mind is vibhuti of Krishna. Indriyanam manaschasam. Mind is a vibhuti of Krishna. It is the opulence of Krishna. It can only be satisfied when it renders service to Krishna and when it is fixed on Krishna. Otherwise, this will only take us from one body to other body. Hare Krishna. Okay? Hari Bol, my Hare question Krishna, to her, Seva Padma, meditation on the Lord with a material desire, pure devotee. So how could Lord come before him, as he said, unless we become the pure devotee? Oh, somebody is asking on Facebook that if Dhruva Maharaj, if he was not pure devotee, he went with the desires, how Lord came before him. Lord is independent and he can shower his causeless mercy on anybody if he likes. He can come to, he can even deliver the one who has no practice, like the Ahilya was in a stone form. But when Vishwamitra told Ramchandra to touch, and then the Ahilya become immediately came back into life again. This is called nisadhan, have no practice. Then there's a kusadhan. Kusadhan means not a good practice, bad practice, like kubja. Well, she was giving the scent to the Kansa, but Krishna appeared before him and blessed her and made her beautiful. So how come kusadhan? So Supreme Lord is independent. Here Dhruva Maharaj get the audience of the Lord because most dear devotee of the Supreme Lord, Narayan, Narad Muni blessed him. And therefore, Narad, same thing, you can say, Nal Kuber and Mani Griv. They were the offenders, but because Narad blessed them, Krishna appeared before them. So Lord is independent. He can appear if he likes in front of the demons even. If he don't want, then he don't appear. So, but Dhruva Maharaj has many lifetimes actually experience. He was a great meditator before. Once he saw a prince going in procession, so in his heart he developed a desire to become a prince. Then he became a prince in the Maharaj Uttanapad's, as a Uttanapad's son. But prince is not higher than a mendicant and devotee. So immediately, because of a little pain and disrespect and dishonor given to him by his stepmother Suruchi, he immediately realized his wrong choice, and then already he has done so much. So simply, by mercy of Narad Muni, within 6 months he got the audience of Vishnu, but still after that he became very angry and he was killing the yakshas who killed his brother Uttam. Then Swayambhu Manu has to appear and pacify him. Even after meeting Supreme Lord, offering prayers to Supreme Lord, he became angry, but still he needed the association of devotee. Then he left everything and again he went to the Badrika Ashram and he did the meditation. And he was doing the meditation again. So why? Because he was not purified till that time. He had still desire. And he was a king for so long time. So these are very subtle things. God can appear in front of anything, but they can take advantage or not. Krishna appeared before Kansa, before Duryodhan, but he never took advantage of that. How many people, when Krishna appear on this planet, get advantage from Krishna? Only Pandavas, only Bhishma knew him, who is the, only Vidur knew him, who else? Some tips to remember Lord Krishna. Always chant his holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is the only bona fide method, always to remember Krishna. Okay, Hare Krishna, thank you very much. Is there some question?
There is one question. What are the four levels of consciousness?
Four levels of consciousness. I don't know, you tell me some, then I can tell you others. I don't know what question, what are the four level of consciousness?
Question, Dham Chandra Prabhu, maybe if he's there, he can come online. He's among human beings, animals.
In women and animal, etc., like this he's telling.
Oh, I think this is a Bhagavad Gita, where it says, like the trees, consciousness of trees, this verse is like Dhuma Albeno Avard Garbhas. Albeno Garbhas means the fetus in the mother's womb, and then the fire covered by the smoke, Dhuma, and then what is the third one? So one is the in a tree, consciousness in the tree, then the consciousness rises up to the birds and beasts, and then the human beings, and among human beings the consciousness go. I think in among human beings also there are different levels of consciousness. So this is evolution of consciousness from the lower level to the higher level. So, exactly, I don't know what is the name of the one conscious two. This is Bhagavad Gita verse is there in third chapter. Consciousness is covered. In trees it is covered. Then it is covered in animals like a fire covered by the smoke. And then in a human form it is... Yes, anybody else knows who can want to share?
Dust on the mirror. Dust. A mirror covered by the dust.
Sorry?
Mirror covered by the dust. That is also one level.
Oh, dust. The mirror covered by dust. Yeah, there is a mirror. Mirror covered by dust. Yeah, right. Yeah, in that verse it is there. There are three, and these are three levels there. Usually discourse, this Dinesh Agarwal is asking, usually discourse, every day I am giving 12:30, not today, but 12:30 to 1:30 and evening 6:30 to 7:30. These are the two classes daily I am giving, and sometimes there is an extra class. Then this today is the extra class, yesterday was the evening 9:30 extra class. So, I say, two class roz ki hai normally. Hare Krishna. Yes, Albena. Dhumena avrti agner avrto darpan, darpan avrto darpan. These are level of consciousness. Okay. Thank you. Hare Krishna. Yes, Prabhu.
Thank you very much. Thank you very much.
Thank you, Raja Bhav Gordas. Thank you very much. Hare Krishna.
And I'd like to, for all those people who are watching you from Shyamadesh, His Grace, Sarvabhauma Prabhuji is with us in this movement for over 43 years, and he's a doctor by profession initially, and has been serving Srila Prabhupada's mission so wonderfully. He has taken so many and worldwide travelers, we know. We're very fortunate to have such mercy from him. At a very short notice, Prabhuji has agreed to take.